ओम शांति। तो इस जीवन के जीने की कला क्या है? करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला। इस जीवन की कला है सबका भला करना, सबका कल्याण करना और सबको देते जाना। जो जितना देता है, अध्यात्म में नियम क्या है, वह उतना ही संपन्न बनते जाता है। यहाँ पर जो गणित है, संसार के गणित से उल्टा है। वहाँ देने से कम होता है, यहाँ अगर कोई दे तो बढ़ता है। और यही इस जीवन के जीने की कला है। क्या देना है आत्माओं को? दुआएं देनी है। और क्या देना है? सुख देना है, दुआएं देनी है, शुभ भावनाएं देनी है। और आज की मुरली के स्लोगन से प्राप्तियों का अनुभव। मास्टर दाता कौन है? जो आत्माओं को क्या कराए? प्राप्तियों का अनुभव कराए। हमें जो वर्षा प्राप्त हुआ है कल की मुरली से, रूहानी खुशबू की रूहानी वृत्ति कैसी होगी, रूहानी भावना कौन सी होगी? जो हमने पाया है वो सब पाले, सभी के प्रति ये शुभ भावना की सभी बाप समान बन जाए। चाहे कैसी भी परवश आत्मा हो, परंतु बाप से जो हमने शक्तियां पाई है, उनका सहयोग उन आत्माओं को दे और उसका उन्हें अनुभव कराए। जो गुण और शक्तियां हमने अपने जीवन में धारण की है, ब्राह्मण परिवार में सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। कमी कमजोरियां न देखना, ये ऐसा है ये न सोचना, परंतु ये सोचना कि ये भी बाप समान बन जाए। रूहे गुलाब जो है, उनकी भावनाएं इस तरह की होगी, उनकी कामनाएं जो गरीब है, जो निर्धन है उनको मालामाल, जो दुखी है वो सुखी, जो अशांत है वो शांत। रूहे गुलाब के रूहे रूहानी जो खुशबू है, उनकी ये क्या है? कामनाएं है। और उनकी स्मृति में क्या है? निरंतर एक ही धुन है। कौन सी धुन? कि विश्व परिवर्तन हो जाए, बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। तो मास्टर दाता अर्थात क्या करने वाले? आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले, इस संसार की आत्माओं की देखरेख करने वाले, इस संसार की आत्माओं को संतुष्ट करने वाले। कौन कर सकेगा ये कार्य? जिनकी बुद्धि कैसी है? दिव्य है। जितनी अधिक दिव्यता होगी इस बुद्धि में, उतनी ही क्या ज्यादा होगी? स्पीड ज्यादा होगी। तो बुद्धि को दिव्य बनाना है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठना है। और क्या करना है? विश्व की परिक्रमा करना है, स्पष्ट रूप से विश्व की परिक्रमा करना है। और क्या करो? आत्माओं की देख रेख करो। और क्या करो? आत्माओं को संतुष्ट करो। ऐसे करने वाले तुम सब कौन हो? चक्रवर्ती। ऐसे करने वाले तुम कौन हो? स्वकल्याणी सो विश्व कल्याणी। ऐसे करने वाले तुम सब कौन हो? मास्टर रचता। ताकि इस सृष्टि में एक ही आवाज गूंजेगा आत्माओं का। कौन सा आवाज होगा वो? जब ये हम करेंगे तो कौन सा आवाज गूंजेगा सृष्टि में? हमने ज्योति देखी। और क्या देखा? चलते हुए फरिश्ते देखे। तो मास्टर दाता अर्थात जहां देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं। मास्टर दाता अर्थात प्रेम, लेने वाले अर्थात लेवता, लेने वाले अर्थात जहां अहंकार है। एक तरफ है दाता और दूसरी तरफ है लेवता, एक तरफ है प्रेम दूसरी तरफ है अहंकार। बहुत जमाने पहले एक बहुत बड़ा वृक्ष था, इतना बड़ा वृक्ष कि जिसकी डाल डालियां आकाश को चूमती थी, इतना बड़ा एक वृक्ष था। उस वृक्ष के पास एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा रोज खेलने आता था और उस बड़े वृक्ष को उस बच्चे से प्यार हो गया, उस वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से क्या हो गया, बहुत ही प्यार हो गया। जब भी बच्चा खेलने आता तो वो जो वृक्ष था अपनी डालियों को, अपनी डाल को नीचे झुकाता था, किसके लिए, ताकि वो बच्चा उससे फल फूल और पत्ते तोड़ सके। प्रेम है वो वृक्ष, क्योंकि वो झुकना जानता है, देना जानता है, दानी के संस्कार है और दाता है, और जो लेने वाला है वो लेता है। तो जब भी बच्चा वहां आता तो उसको वो बहुत प्यार करता, ऐसा अद्भुत प्यार हो गया उस वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से कि जब वो बच्चा नहीं आता तो उसे उसकी याद आती कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। प्रेम की उदासी यही है कि जब वो बांट नहीं सकता, प्रेम की उदासी का कारण क्या है, जब वो बांट नहीं सकता तब प्रेम उदास होता है कि क्या दू और किसको दू, कोई तो आ जाए जिसको मैं दे दू। यह प्रेम की गति है। बच्चा आता, फूलों को तोड़ता, पत्तों को तोड़ता और अपने सिर पर ताज बनाता और जंगल का सम्राट हुए घूमता आनंद के साथ। प्रेम जिसके मस्तक पर बैठता है वह आनंद से आपूरित होता है, आनंद से भरता है, ऐसा आनंदित वही आनंद का नृत्य और गान करता है। बच्चा बड़ा होने लगा, थोड़ा कम आने लगा, फिर भी वृक्ष उसे पुकारता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रेम प्रतीक्षा करता है, प्रेम का स्वभाव क्या है, प्रतीक्षा करना, लव नोस वेटिंग, अब तो आ जाओ अब तो आ जाओ। परंतु बच्चा अब थोड़ा बड़ा हुआ है, उसके दोस्त उसके पास है, उसे परीक्षाएं पास करनी है, बच्चे के पास अब बहुत सारे काम हैं, टाइम उसके पास थोड़ा कम है, फिर भी कभी कभी आता है, फिर भी पेड़ उसे निरंतर पुकारता ही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चा लेवता और वृक्ष देने वाला, या देवता कहो, वो देने वाला है। बच्चा प्रयोजन ढूंढता है, किस प्रयोजन से जाओ, मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं उसके पास गया तो। प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं है, ये करो तो मैं प्रेम करूं, नहीं, तुम जो हो जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, यह प्रेम की भाषा है, यह देने वाले की भाषा है। वृक्ष इंतजार ही करते रहता, कभी कभार जब बच्चा आता तो उसके साथ खेलता, फिर अपने फल नीचे झुकाता। बच्चा और बड़ा होता है, फिर तो बच्चा आना बहुत कम हो जाता है, और जब कभी आता है एक दिन तो कहता है, क्या है तुम्हारे पास मेरे लिए देने के लिए, मुझे पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकोगे। वृक्ष कहता है, पैसे, ये पैसे क्या होते हैं, हमें तो पैसे पता ही नहीं क्या है, ये बीमारी तो मनुष्य की है हमारी नहीं, पैसों का तो हमें ज्ञान ही नहीं, हम तो बिना पैसों के ही पलते हैं, इसीलिए ही इतने आनंदित है, इसीलिए हमारी शाखा इतनी दूर दूर गगन तक फैलती है, इसलिए हम इतने आनंदित हैं और इतने खुशी है। पैसे जिनके पास है और ये बीमारी जिनके पास है, वो तो मंदिरों में जाकर बैठकर प्रवचन सुनते हैं कि जिनके पास पैसे है कि शांति कैसे पाई जाए और सुख कैसे पाया जाए, पैसों से हमें क्या। फिर भी वृक्ष सोचता है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तुम एक काम करो, मेरे जितने फल है सब तोड़ कर ले जाओ और जितने पैसे तुम्हें चाहिए उन फलों से तुम बेचकर प्राप्त कर लो। तो बच्चा तो नहीं, अभी वो प्रौढ़ हो गया है, थोड़ा सा जवान हो गया है, वो जाता है कुल्हाड़ी लेकर आता है और कुछ फल हाथ से, कुछ डालियां तोड़ता है, पत्ते तोड़ता है और सारे के सारे फल लेकर जाकर बेचता है, पैसे कमाता है, पैसों से फिर पैसे कमाता है, क्योंकि अब उसे कुछ बनना है इस जीवन में। वृक्ष फिर भी आनंदित है क्योंकि वृक्ष का आनंद किस में है, देने में है, क्योंकि वृक्ष मास्टर दाता है, उसे लेने का कोई संकल्प नहीं है, उसे बस देना ही आता है। वृक्ष फिर भी उसे पुकारता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चा युवा और बड़ा होता है, अभी तो उसके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, अभी उसके पास गृहस्थी है, अभी उसके पास संभालने के लिए बीवी बच्चे हैं। फिर भी एक दिन अचानक जब आता है बच्चा उस वृक्ष के पास, तो वृक्ष कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए, आओ मेरे मित्र, मेरा आलिंगन करो। व्यक्ति कहता है, ये क्या पागलपन रखा है तुमने, क्या है तुम्हारे पास जो मुझे तुम दोगे, क्या तुम्हारे पास घर है, मुझे घर चाहिए। वृक्ष कहता है, घर, ये घर क्या होता है, हमें तो घर की आवश्यकता ही नहीं है, ये बीमारी तो केवल मनुष्यों की बीमारी है जिन्हें घर की आवश्यकता होती है, हम तो बिना घर के ही रहते हैं। परंतु यहां यदि तुम्हें चाहिए ही घर, तुम मुझे मेरी टाल डालियां काट लो और उन्हें ले जाओ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर से जाता है, फिर से कुल्हाड़ी लेकर आता है और इतनी बुरी तरह से झाड़ को काटता है कि केवल उसका एक ठुंठ ही रह जाता है और अपना घर बनाता है, और फिर तो महीनों तक नहीं आता है। फिर भी वृक्ष इसी में आनंदित है कि मैंने दिया है, वृक्ष का प्राण इसी आनंद में समाया हुआ है कि मैंने दिया है, मैंने दिया है। उसका संकल्प अभी भी लेने का कुछ नहीं है, अभी वो देना ही चाहता है। साल गुजर जाते हैं, व्यक्ति नहीं आता, बूढ़ा हो जाता है और एक दिन आता है और कहता है कि अब भी तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, मैं तो दूर देश में जा रहा हूं, बहुत धन कमाना है मुझे, समुद्र की यात्रा है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो अभी। वृक्ष अभी भी देना चाहता है, उसका आनंद क्योंकि देने में है, उसके पास मनुष्य जैसी इच्छाएं नहीं है, मनुष्य का वो स्वभाव नहीं है, वो प्रेम का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक नहीं है, वो झुकना भी जानता था, इसके लिए सबसे पहले झुका था, उसने प्यार करना भी जाना था। परंतु मनुष्य जो प्यार करता है बड़ों से करता है, परंतु प्रेम ये नहीं देखता है कि बड़ा है नीचा है, छोटा है बड़ा है, प्रेम इन भाषाओं को नहीं जानता। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास अब क्या है मेरे लिए, कहता है कि मेरे पास है तो कुछ नहीं, परंतु ये जो मैं बचा हूं अभी थोड़ा बहुत, तुम मुझे काट कर एक नाव बना लो, शायद मैं तुम्हारे काम आऊं, परंतु तुम सकुशल जाना, ठीक से जाना। फिर से वो व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस ठुंट को भी काटता है और बस ना के बराबर रह जाता है वो झाड़, वह वृक्ष, जाता है नाव बनाता है और समुद्र की यात्रा पर निकल जाता है। वृक्ष को फिर भी उसका इंतजार है, उसकी चिंता भी है, कहीं डूब तो न जाए, सकुशल पहुंचे, झाड़ जो नाव है वो ठीक से उसे वहीं पहुंचा दे जहां उसे जाना है, और फिर वो आ जाए। वो अब मरने को है, अस्तित्व ही समाप्त हो गया है देने में, फिर भी उसे आकांक्षा इसी बात की है कि वो आ जाए और मुझसे ले जाए, आ जाए और मुझसे ले जाए। ये स्वभाव है प्रेम का। अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है जिससे प्रेम है उसके लिए, फिर भी देने का भाव वहां पर भी रहता है। उसे शब्द नहीं चाहिए, मौन की भाषा है, मौन मौन को समझता है। वह प्रेम, वह दाता। बाबा कह रहे हैं मास्टर दाता बनो, अर्थात ब्रह्मा बाप समान। मास्टर दाता बन, स्लोगन याद है ना सभी को, क्या करो? आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराओ। आत्माओं को क्या करो? प्राप्तियों का अनुभव कराओ। विश्व की परिक्रमा करनी है तुम्हें, जैसे राजा महाराजा होते हैं, भेष बदल कर भी अपने राज्य की परिक्रमा चक्कर लगाते थे, क्या देखने के लिए? सभी सुखी तो है, सभी संतुष्ट तो है, किसी को कोई दुख तो नहीं है। हम कौन है? मास्टर रचता है। स्वकल्याणी के साथ कौन है? विश्व कल्याणी है। किस आधार से यात्रा करनी है? बुद्धि को उतना दिव्य बनाना है। ये बुद्धि ही क्या बन जाए? विमान। इस विमान के द्वारा निकलो और इस भूमंडल की परिक्रमा करो, आत्माओं को देखो, आत्माओं की पुकार सुनो। आत्माएं तड़प रही है, रो रही है, दुखी है, अशांत है, परवश है, निर्बल है, ऐसी निरीह अवस्था में आत्माएं हैं। उन आत्माओं के प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम पूर्वज हैं, क्योंकि हम चक्रवर्ती बनने वाले हैं, इसके लिए हमें चक्र लगाना है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाए। इसी पर हम योग अभ्यास करेंगे। संसार की आत्माएं कहे ये है वो ज्योति, संसार की आत्माएं कहे कि ये है वो चलते हुए फरिश्ते। अति तेजस्वी चमकता हुआ एक सितारा भ्रुकुटी के मध्य में, मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर में हूं, मेरी ये स्थूल देह लोप हो गई है, अनुभव करे तेजस्वी आत्मा सूक्ष्म शरीर में, फरिश्ते स्वरूप में। मेरे अंग अंग से दिव्य प्रकाश फैल रहा है, इसी फरिश्ते स्वरूप से अब मैं आत्मा जा रही हूं ऊपर आकाश में। इस धरती के ऊपर मेरे अंग अंग से संपूर्ण पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही है। इस भूमंडल के विभिन्न खंडों के ऊपर सर्वप्रथम मैं फरिश्ता यूरोप के ऊपर जा रहा हूं। वहां की सभी आत्माओं को संतुष्टता की किरणें प्रदान कर रहा हूं। दूसरा महाद्वीप अमेरिका के ऊपर अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हूं। देख रहा हूं सभी आत्माओं को अशांत आत्माओं को शांति का दान दे रहा हूं। उनकी अशांति लोप हो रही है। आत्माएं गुणगान कर रही है। दिव्य ज्योति को आसमान में देख रही है। फिर मैं फरिश्ता चला तीसरा महाद्वीप अफ्रीका के ऊपर। यहाँ की सभी दुखी आत्माओं को सुख की किरणें प्रदान कर रहा हूं। उनके सूखे प्राणों में नव ऊर्जा का संचार कर रहा हूं। अब मैं चला आगे एशिया खंड के ऊपर। सभी पतित और विकारी आत्माओं को संपूर्ण पवित्रता की किरणें प्रदान कर रहा हूं। मेरी दृष्टि से पावन किरणें निकल एक एक आत्मा पर पड़ रही है। आत्माएं अपने अनादि स्वरूप का अनुभव कर रही है। इस सृष्टि पर आवाज गूंज रहा है। यही है वो फरिश्ते। मैं आगे बढ़ते हूँ। पांचवा खंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। निर्बल आत्माएं कमजोर आत्माएं मुझसे सर्व शक्तियां प्राप्त कर रही हैं। नवीन शक्ति उनमें आ रही है। चेतना जागृत हो रही है। मैं स्वकल्याणी स्व विश्व कल्याणी आत्मा हूं। मैं चक्रधारी आत्मा हूं। मैं पूर्वज आत्मा हूं। संसार की सभी आत्माओं की देखरेख मेरी जिम्मेवारी है। फरिश्ता पुनः नीचे आ रहा हूं और अपनी देह में स्थित हो रहा हूं। सभी आत्माएं मुझे सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही है। विशाल वृक्ष की तरह अनंत में फैले हुए वृक्ष की तरह सभी आत्माएं अब मेरी छाया में है। बात समान है, मास्टर दाता है। ओम शांति। विदेश की एक महिला थी जिसने कभी किसी चित्रकार के पास एक चित्र बनवाया। वह उस चित्रकार से वो चित्र लेने गई। चित्रकार बहुत ही प्रसिद्ध था परंतु गरीब बहुत था। जब उसने वो चित्र देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और उसने उससे पूछा कि इसका कितना दाम है। हुआ तो चित्रकार जो कि बहुत ही गरीब था सोचने लगा कितना मांगू, कम मांगू या ज्यादा मांगू। जानता तो था कि ये महिला करोड़पति है पर मुझे कितना मांगना चाहिए। $100 मांगू, विदेश की कथा है, कि $200 मांगू, कि $500 मांगू, कितना मांगू, या कहीं और ज्यादा मांगू, या जो मांग रहा हूं कहीं ज्यादा तो नहीं, या कहीं ये दे ही नहीं तो क्या करूं, सोचते ही रहता है। तब तक वह स्त्री पूछती है कितना हुआ। वो कहता है कि जो आपकी इच्छा वो दे दो। उसको लगता है यही उत्तर ठीक है। तो वो महिला कहती है ये मेरा कीमती पर्स है, इसको रख लो। वो कहता है ये पर्स मेरे किस काम का है, मैं इस पर्स से करूंगा क्या, अगर मुझे पैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। तो वो कहता है ये पर्स मेरे किस काम की, मैं इसे लेकर इसमें रखू भी क्या रखू, ऐसा करो ये पर्स आप रख लो, आप मुझे $100 दे दो। वो महिला बहुत समझाती है कि नहीं रख लो। वो कहता है नहीं मेरे किसी काम की नहीं है ये पर्स, मैं तो ब्रह्मचारी व्यक्ति हूं, मेरे कोई परिवार नहीं है, पर्स लेकर भी मैं क्या करूं। वो कहती है अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, अब तुम्हें $100 ही चाहिए तो मैं तुम्हें $100 ही देती हूं। वो पर्स लेती है, पर्स को खोलती है, बहुमूल्य पर्स, उसमें $1,00,000 रखे रहते हैं, उसमें से $100 निकालती है और उस व्यक्ति को देती है। महिला चली जाती है, चित्रकार छाती पीटता है जोर जोर से। क्या अर्थ है इसका? भगवान से हम क्या मांगते हैं? उसने हमें क्या क्या नहीं दे दिया, सारा के सारा खजाना दे दिया, परंतु हमारी मांगे कितनी है, छोटी छोटी, $100 उतना ही चाहिए हमें। वो कह रहा है लो सर्व शक्तियां तुम्हारे पर्स में है ना, सभी माताओं के पास पर्स, सभी पर्स में बाबा ने सर्व शक्तियां दे दिए, परंतु हम उससे क्या मांगते हैं, एक सहन करने की शक्ति दे दो। तो बाबा पर्स लेता है, बहुत सारी शक्तियां उसमें पड़ी हुई है और एक शक्ति निकालकर तुम्हें देता है और तुम उसी में खुश होते हो। जन्मते ही बाप ने तुम्हें सर्व शक्तियां दे दी है। तो जो उसने सब कुछ दे दिया तो क्यों हम ये भिखारी, क्यों ये दरिद्रता हमारे अंदर है? जबकि बाबा ने कल कहा था ना आंध्रा वालों को, अंधियारा मिटाने वाले, कौन सा अंधियारा, गरीबी का, तन का, मन का और धन का। तुम ज्ञान सूर्य हो, हमें संसार की आत्माओं के गरीबी का अंधियारा दूर करना है, उसके लिए स्वयं संपन्न बनना पड़ेगा, स्वयं को इतना भरना पड़ेगा ताकि हम दे सके। हम खुद ही यदि भिखारी है, खुद ही यदि मांगने वाले हैं, तो कैसे दे सकेंगे, दे कौन सकता है। जिसके पास है। दे कौन सकता है? जो रहम दिल है। दे वो सकता है जिसकी बुद्धि इतनी भरी है उस ज्ञान से, उस परमात्मा प्रेम से। फिर वो देना देना नहीं, वह स्वस्फुरन होगा, स्वतः ही जाएगा। देने का कोई संकल्प भी नहीं, जो कुछ कर रहा है वो देना ही है। ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो तो सबसे पहले हम अभी आज की जो साकार मुरली है वो डिस्कस करेंगे। तो सभी ने सुनी है ना? तो बताओ क्या क्या बाबा ने आज की मुरली में कहा, फिर उसके आधार से हम आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस किस को याद है? पहले भाइयों की तरफ से, कोई भी कर्म करो तो बाबा की याद में करो, चाहे बड़ई का काम हो, चाहे राजाई हो, चाहे कोई भी कार्य हो। तुम्हें कर्म योग की शिक्षा बाबा ने आज दी है, तुम्हें बाप को याद करना है। वाह, क्या कहा बाबा ने? वाह, आगे का वाक्य कौन पूरा करेगा? वाह, बाप और साजन को कितना याद करना चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हो। वो पति, स्त्री अपने पति को कितना याद करती है, और वो बच्चा अपनी मां को कितना याद करता है, वैसा ही याद करते हो क्या बाप को? तीन प्यार कंबाइंड हो जाए टुगेदर। वन, एक लोभी व्यक्ति को जितना प्रेम धन से होता है वो प्लस, एक मां का अपने बच्चे में जितना मोह होता है उतना, एक कामी पुरुष का देह में जितना प्रेम होता है उतना, ये तीनों ही प्रेम मिल जाए और भगवान की ओर चले जाए तो वो स्वयं हुजूर हाजिर। परंतु ऐसा हो तब तो कर्म करते हुए भी बाप को याद करना। कल की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, फर्स्ट पार्टी, अमृत वेले से तो रात तक तुम्हें बाबा ने दिनचर्या कैसी व्यतीत करनी है उसके लिए श्रीमत दी हुई है। कौन सी श्रीमत दी हुई है, कौन सी श्रेष्ठ मत दी हुई है? चलते फिरते उठते बैठते खाते कार्य व्यवहार में आते क्या स्मरण रहो, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी समझेंगे तो बोझ बाप पर पड़ जाएगा, ट्रस्टी समझेंगे तो हाई जंप लगा सकेंगे, ट्रस्टी समझोगे तो डबल लाइट हो जाएंगे, ट्रस्टी समझेंगे तो उड़ सकेंगे, गृहस्थी समझेंगे तो दुम लग जाएगी, गृहस्थी समझेंगे तो बोझ खुद पर पड़ जाएगा, गृहस्थी समझेंगे तो उड़ नहीं सकेंगे। कर्म करते हुए यह स्मरण रहे, मैं ट्रस्टी हूँ। कर्म करते समय टीचर से मुलाकात, कल की मुरली, मैं करणहार हूँ, करावनहार वो है। मैं रूह, रूहानी वृत्ति, रूहानी खुशबू में रूहानी वृत्ति, मैं रूह सुप्रीम रूह की छत्र छाया में हूँ, मैं रूह सुप्रीम रूह की श्रीमत के विरुद्ध एक कदम भी चलने वाली नहीं हूँ, मैं रूह सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ, मैं रूह उसके बगैर नहीं रह सकती और सुप्रीम रूह मेरे बगैर नहीं रह सकता, संकल्प में भी दूर नहीं। वह संकल्प बोल और कर्म में भी क्या है? वो हुजूर हाजिर है, इसके लिए हम जी हुजूर है। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? कर्म योग, कर्म करते हुए, चाहे राजाई का कर्म हो, चाहे बड़ई का कर्म हो, कोई भी कर्म हो, परंतु बाप की याद रहे। वैसी ही वही तीव्रता, कौन सी तीव्रता? जितना स्त्री अपने पति को कितनी तीव्रता से याद करती है, सारे प्राण उसके पति में होते हैं, वो तीव्रता होनी चाहिए याद की, वह व्याकुलता होनी चाहिए याद की, हल्की फुल्की याद नहीं, व्याकुलता। वही तीव्रता जो बच्चे का बाप के प्रति या माँ के प्रति होती है। एक पॉइंट अभी माताओं की तरफ से, दूसरी पॉइंट आज की मुरली से, बाप के ज्ञान से हम देवता बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप के ज्ञान से हम देवता बनते, यह नॉलेज केवल तुम ब्राह्मणों के पास है। कितनी नशे वाली पॉइंट है ये, यह नॉलेज केवल तुम ब्राह्मणों के पास है। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, दुनिया में ये और कोई नहीं जानता। आत्मा स्टार, परमात्मा स्टार, ये दुनिया में और कोई नहीं जानता, केवल तुम जानते हो। वो होमवर्क दिया, ये होमवर्क किस किसने किया आज की मुरली से? आज बाबा ने होमवर्क दिया है, बाबा ने होमवर्क दिया था, आत्माओं और परमात्माएं और श्री कृष्ण क्या क्या अंतर है, किसने किया? ये किया है, वेरी गुड। तो आत्मा में क्या, दो तो बाबा ने वही बता दिए, एक निराकार एक साकार, एक पुनर्जन्म में आता है एक पुनर्जन्म में नहीं आता है, दो वही दिए हुए है। बाकी पॉइंट्स बहुत सारे है, वो सभी चिंतन करने के लिए रोज का जो मुरली से अगर होमवर्क शब्द आया है मुरली में तो निकालने ही है। आत्मा में क्या और परमात्मा में क्या अंतर? अभी भाइयों की तरफ से दूसरा पॉइंट आज की मुरली से। आधा कल्प ज्ञान की डांस और आधा कल्प भक्ति की डांस। जब भक्ति की डांस है तब ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की है तब भक्ति की नहीं। ज्ञान में आने के बाद भी जो भक्ति की डांस जिनकी चालू है वो हाथ खड़े करो। शिव बाबा की भक्ति कौन कौन करते हैं? कि बाबा सुख दे दो, बाबा शांति दे दो, बाबा पैसे थोड़े कम है, बाबा पैसे दे दो। बाबा कहते मैं तुम्हें हीरे देने आया हूं और तुम मुझे कागज मांगते हो। बाबा सहन करने की शक्ति दे दो। माताएं बाबा से बहुत मांगती है, क्या मांगती है? बाबा सहन करने की शक्ति दे दो। तो बाबा का उत्तर क्या है माताओं के लिए? आप अपनी पर्स खोल के देखो, उसमें $1,00,000 दे रखी है शक्तियां। तो जब ज्ञान डांस है तब भक्ति की डांस नहीं, जब भक्ति की डांस है तब ज्ञान की डांस नहीं। मांगना बंद, मांगना अर्थात भक्ति, मांगना अर्थात भक्ति, किसी से प्यार मांगना, केयर मांगना, अटेंशन मांगना, ये हमारा ध्यान रखे। हम बीमार है, हमारा कोई ध्यान रखे, कोई दवाई लाके दे, कोई खाना लाके दे, हमारी केयर करे, ये सब भी क्या है? सूक्ष्म इच्छा ही तो है। जब हम इच्छाओं से मुक्त होंगे तो ही दूसरी आत्माओं की इच्छाओं को, आत्माओं को इच्छा पूर्ण कर सकेंगे, संसार की आत्माओं के। तो मांगना बंद, क्योंकि ज्ञान डांस करना है। कल की मुरली मद्रास से मुलाकात, मद्रास, रास करने वाले, डांस करने वाले, तीन प्रकार की डांस थी, कौन सी? स्थूल डांस, दूसरी संस्कार मिलन की रास, और तीसरी खुशी की डांस, और आज की मुरली में है ज्ञान की डांस। तो मद अर्थात मगन, इन रास में मगन रहो। तो भक्ति की डांस करना आज से बंद, भक्ति की डांस करना बंद अर्थात मांगना बंद, केयर प्यार अटेंशन, ये तीन मुख्य चीजें हैं। कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारी केयर करे, कोई हमें पूछे, हमें संसार की देखरेख करना है, वो हमारी देखरेख करे, ये कामना है, इच्छा है, आकांक्षा है। ये तो बहुत दुखी होगा, वो जो वृक्ष है उसे कभी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा उसकी देखरेख करे, वो वृक्ष को कभी कामना नहीं थी कि वो उसे पानी दे, वृक्ष को कोई कामना नहीं थी, उसे बस एक ही इच्छा थी मैं देते जाऊं, उसका आनंद देने में था। वैसा वृक्ष बनना है ना, जो केवल दे, लेने का संकल्प ही नहीं है उसे, वैसा वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट आज की मुरली से, ये कपड़ा कैसा है? फटा हुआ। दो प्रकार के कपड़ों का वर्णन है आज की मुरली में, तीन प्रकार के कपड़े के, एक है नया कपड़ा सत्व प्रधान, एक है पुराना कपड़ा तमो प्रधान, पर ये उससे भी नीचे है, फटा हुआ, पुराना भी नहीं, क्या कहा? फटा हुआ कपड़ा है ये। ये देह क्या है? फटा हुआ कपड़ा। अगर ये देह ऐसा फटा हुआ कपड़ा है तो क्यों इससे इतना प्यार, क्यों इसकी इतनी चिंता, क्यों इसी का ही चिंतन, क्यों इसी का ही आकर्षण, वैराग की दो जगह आज मुरली में बात की है बाबा ने, दुनिया खत्म होने वाली है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को अशरीरी आत्मा निश्चय कर। तो देह क्या है? फटा हुआ कपड़ा, फटा हुआ है और बहुत गीला भी हो गया है, उसको सिलाने जाओ जहां से सुई डालोगे वहां से वो फटेगा, ऐसा गीला और फटा हुआ ये कपड़ा है। और गीला भी स्वच्छ पानी से नहीं, एकदम मैले दुर्गंध वाले पानी से ये गीला हुआ है, ऐसा ये गीला हुआ कपड़ा या कागज जहां से सुई डालोगे सिलाने के लिए वहीं से वो फटेगा, फिर भी सिलाने की बहुत इच्छा है, फिर भी इसके ऊपर सेंट लगा लगा कर लगा लगा कर उसकी दुर्गंध निकालने का प्रयत्न है। सेंट कौन कौन लगाता है हाथ खड़े करो, माताओं में से ईमानदारी से खड़ा किया। संसार की आत्माएं जो सौंदर्य के संसाधनों को प्रयोग करती है वो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों के लिए नहीं है, हमारा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार पवित्रता है। संसार की आत्माएं जो कुछ करती है वो हमारा श्रृंगार नहीं हो सकता, उससे केवल देह की सौंदरता बढ़ेगी, आत्मा की नहीं। आत्मा का सौंदर्य तपस्या से ही बढ़ेगा, त्याग से बढ़ेगा, जिसके जीवन में जितना त्याग, आज की मुरली में जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है वो उतनी ही स्पीड से उड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आज की मुरली से, निश्चय फाउंडेशन है, मैं जो हूं मैं जैसा हूं मुझे कोई विरले ही जानते हैं और निश्चय करते हैं। पूरा वाक्य क्या है बाबा का? मैं जो हूं मैं जैसा हूं मुझे बहुत कम विरले ही जानते हैं और निश्चय करते हैं। भगवान को यथार्थ रीति केवल तुम ब्राह्मण आत्माएं जानती हो, आज की मुरली में महावाक्य है एक जगह, क्या कहा बाबा ने? भगवान को यथार्थ रीति केवल तुम ब्राह्मण आत्माएं जानती हो। कल की मुरली पार्टियों से मुलाकात पार्टी नंबर 4, तुम महान भाग्यशाली हो, कोटों में कोई और कोई में कोई, ये जो गायन है ये तुम्हारा गायन है, इसके लिए बाप दादा तुम्हें लकीएस्ट कहते हैं और लवलीएस्ट कहते हैं, तो इसके लिए नाचो और गाओ। कौन सा गीत गाना है? कौन सा गीत गाना है माता जी? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। कल हमने कहा था ना, एक दूसरे भी मेथड से इसको किया जा सकता है, वाह रे मेरा भाग्य वाह, ऐसा तो नहीं करते ना सभी, वाह रे बाबा वाह और वाह रे ये ड्रामा वाह, ऐसा तो नहीं गाते ना, शब्द वही है केवल भाव दूसरा है। मुझे ही होना था, इतने लोग थे ये मेरे साथ ही होना था, मैं ही बीमार पड़ना था, ये हिसाब किताब मेरे ही साथ क्यों? वाई मी, इंग्लिश में किताब है वाई मी करके, अंग्रेजी की एक किताब है उसमें इसी बात का विवेचन वर्णन किया हुआ है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। तो अपने भाग्य का निरंतर गायन, बाबा ने कहा गाते रहो नाचते रहो, अपने आप को साधारण नहीं समझो, क्या समझो कल की मुरली का आगे की लाइन? बहुत श्रेष्ठ समझो। क्या करो? अपने आप को कुमुद बहन साधारण नहीं समझो, क्या समझो? बहुत श्रेष्ठ समझो, लकी स्टार, उम्मीदों के सब स्टार। ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आज की मुरली से, ये समय विकर्म विनाश करने का समय, मुरली की लास्ट लाइन, अब कोई विकर्म तुम्हें नहीं करना है अच्छा, अब कोई विकर्म तुम्हें नहीं करना है। और रावण के मत पर तुमने मेरी बहुत ग्लानी की है, बाबा ने कहा मैं आता कब बताओ, मैं कब आऊं? क्या पूछा? प्रश्न पूछा बाबा ने कि बताओ मैं कब आऊं, रावण के मत पर तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, मैं आता तब हूं जब भारत का डाउनफॉल होता है, मैं आता तब हूं जब भक्ति से कीर्ति कला होती है, तब मैं आता हूं। परित्राणाय साधुनाथ, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, ये कार्य है उसके, अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना, परित्राणाय साधुनाथ, ये उसके कार्य है, अनेक कार्य हुए उसके। राम जन्मते हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, बहुत सारे कार्य, एक कार्य के लिए नहीं आता है वो, उसका जो मिलन है बहुआयामी मिलन है, वो बहु कारणों से वो मिलन होता है। और क्या कहा बाबा ने आज, लास्ट पॉइंट, एक कोई लास्ट पॉइंट बता दे, और कोई रास्ता नहीं है, केवल और केवल याद से ही, ये जो खाद है आत्मा जो नरकवासी विकारी हुई है, केवल इस याद से ही वो पावन बनेगी। ठीक है, तो संक्षेप में इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो रोज की जो मुरली चलती है उसका अध्ययन करना, मनन करना, उससे योग अभ्यास निकालना, आज की मुरली को दूसरी मुरली से जोड़ना, सारी मुरलियों में रमन करना और इसी आनंद में रहना। अच्छा, ओम शांति।